अगले फेडरल चुनाव को देखते हुए प्रवासन एक निर्णायक मुद्दा बनता दिख रहा है। ये पता चलने के बाद कि नेट माइग्रेशन लंबी अवधि के लिए आगमन की संख्या शून्य से लंबी अवधि के प्रस्थान की संख्या सितंबर 2023 तक वर्ष में 5 लाख से अधिक हो गई, अल्बनीजी सरकार ने वार्षिक आंकड़े को 2,35,000 तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। विपक्ष के नेता पीटर डटन कहते हैं कि यदि वे निर्वाचित होते हैं तो अंततः ये आंकड़ा 1,60,000 तक कम कर देंगे। जवाब में दो इमिग्रेशन और अंतर्राष्ट्रीय नीति विशेषज्ञों ने कैनबेरा में नेशनल प्रेस क्लब को एक संबोधन दिया है, जिसमें उन्हें ये पूछा गया था कि क्या ऑस्ट्रेलिया का महान बहुसांस्कृतिक प्रयोग समाप्त हो रहा है क्या। डॉक्टर अब्दुल रिजवी एक स्तंभकार और डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन के पूर्व उप सचिव हैं। वे कहते हैं कि नेट माइग्रेशन पर विचारशील चर्चा का वे स्वागत करते हैं, लेकिन उन्हें ये डर है कि अनियंत्रित बहस, जिसे वे नागरिक अशांति कहते हैं, का कारण बन सकता है।
We should have a public conversation about a long-term net migration target, or better, a range, given the difficulties of actually hitting a net migration target. And its consequences for our collective future is, in my view, unarguable. But whether we can have that conversation calmly and rationally remains an open question. The danger with an election fought on immigration levels, as many past Australian politicians on both sides have recognised, is that it could degenerate into Trump-style name-calling and civil unrest, including at polling centres.
व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी का जब अंत हो रहा था, उसी दौरान डॉक्टर रिजवी अपने बचपन में ऑस्ट्रेलिया आए। इस पॉलिसी द्वारा गैर यूरोपीय प्रवासियों को ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने से रोकने की मांग की गई थी। वे कहते हैं कि उनके अनुभव ने अच्छी और बुरी प्रवासी नीति के बारे में उनकी समझ को सूचित किया है, और कहते हैं कि अल्बनीजी सरकार और विपक्ष दोनों द्वारा अपनाई गई अल्पकालिक रणनीतियों से अराजकता पैदा हो सकती है। इसके बजाय उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक समृद्धि और सामाजिक एकजुटता को संरक्षित करने के लिए शुद्ध प्रवासन की एक मौलिक नई समझ का आह्वान किया है।
Net migration cannot be managed in the same way governments manage the migration program. Hitting a specific number of permanent visas issued is well within the capacity of government. That is not the case for net migration, given the measurement issues and the lags involved. The approach to managing net migration will have to be similar to the way the Reserve Bank manages inflation. That is to try to and keep net migration within a broad range and to take early corrective action if it appears net migration is moving significantly outside the range that after allowing for the impact of fluctuations in the labor market.
फेडरल सरकार और विपक्ष दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या को सीमित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। पहले हर यूनिवर्सिटी द्वारा जनवरी 2025 से नामांकन की संख्या को सीमित किया जा सकता है। डॉक्टर रिजवी ने घरेलू छात्रों के अनुरूप न्यूनतम प्रवेश अंकों के साथ अधिक कठोर प्रवेश परीक्षाओं का आह्वान किया है। प्रोफेसर माइकल वेस्ली अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं और मेलबर्न यूनिवर्सिटी में डेप्यूटी वाइस चांसलर है, जहां वे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए जिम्मेदार हैं। डॉक्टर रिजवी की तरह वे भी बचपन में ही ऑस्ट्रेलिया आ गए थे। वे मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को सीमित करने की इच्छा के मूल में एक खुली चुप्पी है, जिसे उन्होंने आपत्तिजनक बताया है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के योगदान के बारे में, जिसके कारण आधुनिक ऑस्ट्रेलिया का निर्माण किया गया है। वे ये भी मानते हैं कि योगदान जो महामारी, आर्थिक मंदी और जलवायु संकट का जवाब देने की ऑस्ट्रेलिया की क्षमता को निर्धारित करता है। 1950 के दशक में ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटीज़ में अध्ययन करने वालों के साथ शुरू हुआ था, जिनमें से कई वर्ल्ड वॉर टू के बाद कोलंबो योजना छात्रवृत्ति पर थे।
These students, mainly from Southeast Asia and South Asia, came to a country that was enforcing a racially exclusionary immigration program known as the White Australia Policy. It was a policy with bipartisan backing and broad public support. Many Colombo Plan students stayed with Australian families and began to have a significant effect on the shifting of society's attitudes to race. By the late 1950s, there was growing criticism of the White Australia policy. It started to be loosened in the mid-60s and was abandoned after 1973.
उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के बारे में कही गई बातें, जिसमें ये भी शामिल है कि वे आवास और जीवन यापन की लागत में संकट में योगदान दे रहे हैं, ये सब बातें डेटा से सामने नहीं आती है।
84% of international students who study at Australian universities go home after they finish their degrees. Only 16% stay on in Australia. Surely controlling the number of international graduates that become long-term migrants could be better managed by a more tightly administered post-study work visa regime. Another justification for the proposed legislation is students' pressure on accommodation and thus their contribution to the housing crisis. But students comprise just 4% of renters in Australia.
डॉक्टर रिजवी की तरह वे प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख के सावधानी पूर्वक प्रबंधित शुद्ध प्रवासन का यानी नेट माइग्रेशन का समर्थन करते हैं, क्योंकि बढ़ती आबादी प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि को 1 लाख से नीचे ला देती है। उनका कहना है कि प्रवासन पर अल्पकालिक रोक के कारण फ्रूट पिकर्स से लेकर कुशल श्रमिकों और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों तक सभी को होने वाली आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षति को ठीक करना आसान नहीं हो सकता है।
Already we are seeing students who had intended to study in Australia decide it's too risky. Why would they risk paying an application fee and a visa fee if there's a good chance they won't get a visa or have a long and uncertain wait? Why not just study in Europe or in the Gulf or in the US or in Singapore?
SBS News से पेनरी बकली की इस रिपोर्ट को SBS हिंदी से आपके लिए प्रस्तुत किया प्रियंका हाथवर्णे ने।